कुंज बिहारी। गया गोपी जना बल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जना बल्लभ गिरिवर धारी। जय जसदानंदना ब्रज जनरंजना, जसदानंदना ब्रज जनरंजना। जसदानंदना ब्रज जनरंजना, जसदानंदना ब्रज जनरंजना। जसदानंदन ब्रज जनरंजना, जसदानंदन ब्रज जनरंजना, जसदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, हर कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram, Jaya Ram.
Badiya, badiya.
Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Ram. Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Ram. Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Sita Ram, Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya. Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Sita Ram, Jaya Ram. Dasaratha Nandana Prabhu Sri Ram, Ajodhya Pati Prabhu Sri Ram, Dasaratha. Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Sri Ram, Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Sita Ram, Jaya Ram. Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe. Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe. Jaya Radha Rasi Hari Radha Rasi Hari Radhe. Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe. Jaya Jagannath Jagannath Baladev Jaya Subhadra. Jaya Jagannath Jagannath Baladev Jaya Subhadra. নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল জয় জয় প্রভুপাদ 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 జయం విష్ణుపాద పరమహంస పరివ్రాజకచార్య అష్టకర సతేసి భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదకి జయం విష్ణుపాద పరమహంస పరివ్రాజకచార్య అష్టకర సతేసి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ మహారాజ్కి నామాచార్య శిల హరిదాస్ ఠాకూర్కి అనంతకోటి వైష్ణవ వృందకి శ్రీ రాధాగిరిధరి భగవానుకి జై జగన్నాథ బలదేవ సుభద్రాజికి సమవేత భక్త వృందకి శ్రీల ప్రభుపాదకి నితాయ గౌర్ ప్రేమానందే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరతమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తత జయాద్ముదీరయే నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భాగవతి ఉత్తమా శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టకీ ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్ నిమిళితం జేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం జేన భూతలే స్వయం రూప కదా మాయం దదాతి స్వపదాంతికం వందేయాంసి గురో శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురున వైష్ణవాంశ శ్రీరూపాం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథ నితం తం సజీవం సాదైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణపాదాన్ సగణ లలిత శివి శాఖానితంశ హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత శ్రీరాధాకాంత నమస్తుతే తత్వకాంచన గౌరాంగీ శ్రీరాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవీ ప్రణమామి హరిప్రియే వంశాకల్పతరువ్యశ్చ కృపా సింధువ్యయేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే కృష్ణ తో హమే భగవాన్ శ్రీరామ్ కా జన్మతిథి మనాయేంగే భగవాన్ సంసార్ మే జో ప్రకట్ హుయే కిస్ ప్రకార మర్యాదా కే భీతర్ రహకర్ ఆచరణ కియే ఆర్ భగవాన్ హోతే హుయే భీ అయోధ్యా కే సుఖ్ కు ఛోడ్కర్ రాజ సుఖ్ ఛోడ్కర్ కిస్ ప్రకార జంగల్ మే గయే జంగల్ వనవాస్ కు స్వీకార్ కర్ లియే జో అయోధ్యా కే రాజా హే జో వైకుంఠ పతి హే వో జంగల్ కే పతి బనే వైకుంఠపతి యహాన్ ఆకర్ జంగల్ కే హింస్ర జంతు కే సాథ రహనే లగే తో
किस प्रकार उनके चरित्र शुरू से अंत तक बड़े ही करुण है, हृदय में एक प्रकार का बहुत बड़ा करुण दुख उत्पन्न करता है। भगवान श्री राम का चरित्र ऐसे बना, भगवान आकर के ऐसे चरित्र स्थापन किए संसार के भीतर, तो और अवतार में ऐसे करुण चरित्र चित्र नहीं दिखता है। भगवान श्री राम का चरित्र जिस प्रकार इतने करुणदायी है, करुणा है, करुण करुण है, और कोई अवतार में ऐसा नहीं दिख पड़ता है। तो अपने स्त्री को भी त्यागने के लिए, अपने मर्यादा को रखने के लिए अपनी स्त्री को भी त्याग देते हैं, और 14 साल तक भगवान जंगल में रहते हैं। तो भगवान श्री राम का जन्म किस प्रकार का हुआ आज थोड़े हमें बताएंगे। अत्यंत प्रभावशाली दशरथ महाराज, महात्मा दशरथ महाराज तो इतने बड़े शक्तिशाली व्यक्ति होकर भी हमेशा वो पुत्र के लिए चिंतित रहते थे। राज्य में पुत्र नहीं है करके उनको हमेशा एक प्रकार का दुख खिन्न कर रहा था, वो दुख में अति हमेशा चिंतित रहते थे। और एक दिन ऐसे हुआ, तो ऐसे बैठे थे, अचानक उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, तो मैं पुत्र प्राप्ति के लिए क्यों अश्वमेध यज्ञ न करूं। जैसे ये विचार उनके मन के भीतर आया, तुरंत अपने मंत्री सुमंत को बुलाए और अपने हृदय की जो व्यथा है, अपने हृदय की जो उठी हुई विचार को अपने मंत्री के सामने रखें, मंत्री को कहें। अब मंत्री सुमंत जब ये दशरथ महाराज का विचार को सुने, तो अति उत्तम करके वो भी वो प्रस्ताव को स्वीकार किए, राजी हो गए। जब मंत्री सुमंत राजी हुए, तब दशरथ महाराज अपने मंत्री को आदेश दिए, जाओ मेरे राज्य में जितने सारे विद्वान हैं और मेरे जो कुल पर पुरोहित वशिष्ठ जी, उनको भी निमंत्रण दो राज दरबार में, राजसभा में आने के लिए। और सुमंत जी ये आदेश को लेकर जाते हैं, और कश्यप जी और बड़े बड़े वेदांती ब्राह्मणों को बुला करके आते हैं। और ये ब्राह्मण लोग जब दशरथ महाराज के राज दरबार में पहुंचते हैं, तो दशरथ महाराज वो सारे महर्षियों का चरण की पूजा करते हैं और उनको आसन देते हैं। बैठने के बाद अपने भीतर जो पुत्र सुख की एक प्रकार का दुख हमेशा उनको सता रहा था, तो ये दुखों को वो सारे ऋषियों के सामने कहते हैं। और ये बात भी कहते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए वो एक यज्ञ करने के लिए इच्छा किए हैं। जब महर्षि लोग दशरथ महाराज का हृदय के भीतर ये बातें को सुनते हैं, तो वो भी राजा के साथ वो विचार के सम्मति देते हैं। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम, आप ये यज्ञ का अनुष्ठान करो, हमें सहमति है। और विशेष करके कुल पुरोहित वशिष्ठ जी विशेष प्रशंसा किए ये राजा का ये यज्ञ का करने की इच्छा को देखकर। और दशरथ महाराज निर्णय लेते हैं यज्ञ करने के लिए, और मंत्री सुमंत इस अवसर पर राजा को एक, दशरथ महाराज को एक चेतावनी देते हैं, भविष्यत में सनकादि जी नारद जी को जो बातें सुनाए थे, वही बातें को शास्त्रों से लाकर वो थोड़ा याद कराते हैं मंत्री सुमंत। मंत्री सुमंत अतीत में सनत कुमार जी नारद जी को जो बातें बताए थे, वो बात को सुनाते हैं। क्या बात सुनाए थे ना, भविष्यत में भगवान ऐसे एक अवतार लेंगे और दशरथ महाराज को अपने पुत्र ना सॉरी पिता के रूप में स्वीकारेंगे और अयोध्या को जन्मभूमि के रूप में मान लेंगे। ये बात को याद कराते हैं, भविष्यत के वाणी को, भविष्यत वाणी को सुमंत जी दशरथ महाराज को याद कराते हैं। और ये बातें कैसे ना, ऋषि श्रृंग करके एक ऋषि है, तपस्वी है, वो जब दशरथ महाराज का यज्ञ का अध्यक्षता करेंगे, तभी जाकर उनके पौरोहित्य से, उनके यज्ञ संपादन, उनके हाथों से यज्ञ संपादन होने से दशरथ महाराज को पुत्र प्राप्ति होगा। और ये जो ऋषि श्रृंग है, ये थे कश्यप जी के एक पुत्र थे, बी भांडक, और बीभांडक के पुत्र हुए ऋषि श्रृंग। कश्यप जी जो कश्यप जी जानते हैं, भागवत के भीतर भी उनके चरित्र आती है। तो कश्यप जी के पुत्र थे बीभांडक, और बीभांडक के पुत्र हुए ये ऋषि श्रृंग। ऋषि श्रृंग के द्वारा ये यज्ञ संपादन होने के बाद दशरथ महाराज को महान कीर्तिशाली चार पुत्र प्राप्त हुए। और ये जो ऋषि श्रृंग जन्म से लेकर 16-17 साल तक वो जंगल में ही रहे थे, जंगल में जन्म हुए थे और 16-17 साल तक वो जंगल में ही बड़े थे। वो शहर क्या है और कोई पुरुष क्या है, स्त्री क्या है, वो उनके ये विषय में उनको कुछ ज्ञान नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी के पास रहते थे और पिताजी की सेवा करते थे और यज्ञ करते थे और कुटिया आश्रम के भीतर रहते थे। जंगल में एक कुटिया है, वो कुटिया में रहते थे और पिताजी की सेवा और यज्ञ करना, यही उनके जीवन के व्रत था। और गांव शहर क्या है उनको पता नहीं था, और पुरुष कौन है, स्त्री कौन है, पुरुष स्त्री का ज्ञान उनको पता नहीं था, क्योंकि उनके जीवन में एक ही पुरुष को देखे थे उनके पिताजी, और किसी को देखे नहीं थे। इतने उम्र होने के बाद भी और किसी को नहीं देखे थे। तो इस अवसर पर अंगदेश के राजा रोमपाद वो दशरथ महाराज के बंधु थे, मित्र थे। ये रोमपाद धर्म की उल्लंघन कर दिए। तो जब धर्म की उल्लंघन राजा के द्वारा हो गया तो इंद्र ने उनके राज्य में बारिश प्रदान करना बंद कर दिया। जो अंगदेश के राजा के राज्य में इंद्र बारिश प्रदान करना बंद कर दिया, और जैसे बंद कर दिया सारे राज्य की जो प्रजा थी वो बड़े दुखी हो गए। और राजा ने जब देखा सारे प्रजा बारिश के बिना दुखी है, तो सारे संतों को बुलाए और उनके परामर्श किए, ये उसका प्रतिकार किया है, क्या है मेरे द्वारा जो धर्म की मर्यादा उल्लंघन हो गया, तो उसका प्रतिकार उपाय क्या है, उनका प्रायश्चित क्या है, क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है। तब राजा जब इस प्रकार का सारे संतों को जिज्ञासा करते हैं, तो सारे तपस्वी लोगों ने उनको ये प्रस्ताव देते हैं कि जंगल में रहने वाले जो ऋषि श्रृंग है, वो जब आपके राज्य में उनके चरण कमल रखेंगे तब जाके इंद्र ने आपके राज्य के ऊपर बारिश प्रदान करेगा। जो दिन ये ऋषि श्रृंग आपके राज्य में आ पहुंचेंगे, उसी दिन उसी वक्त उसी समय इंद्र ने आपके राज्य के ऊपर बरसात करेगा। और जैसे सुने और राजा ने सारे तपस्वियों को ये भार दिया, सारे तपस्वियों को कहने लगे कि आप लोग जाइए जंगल में वो तपस्वी को लेकर के आइए। हाँ, ये बात भी बताएं, वो तपस्वी को ला करके आपके कन्या के साथ यदि विवाह हो गया और आपके राज्य में आए और आपके कन्या के साथ विवाह होना चाहिए, ये प्रस्ताव भी दिए। और इतने बड़े साधु ब्रह्मचारी है, तपस्वी है, इतने बड़े साधु ऋषि व्यक्ति है, तो उनका तपस्वी व्रत को भंग करना बहुत बड़े, क्योंकि ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी जीवन से हटा करके और कोई आश्रम में ढकलना ये बहुत बड़ी खराब है। तो ये सारे संतों ने नकार दिए। तो हाँ, सही बात है, हमें ऋषि श्रृंग को बुला सकते हैं, किंतु उनका जो तपस्वी जीवन को नष्ट करना, उनका आश्रम को परिवर्तन करना, ये शास्त्र की बहुत बड़ा मर्यादा का बाहर हो जाता है, ये कार्य हमारे द्वारा असंभव है। तो सारे तपस्वियों ने ये बात को कह दिए, राजा को रोमपाद को बताएं कि ये कार्य सही है, आपने जो कहे ये सही है, लेकिन उनका जीवन में एक ब्रह्मचारी जीवन को नष्ट करना ये बहुत बड़ी ये सही नहीं है। तो राजा जब सुने, सारे तपस्वियों से निराश हो गए, तो कहने लगे अभी क्या करना है। तो सारे तपस्वियों ने राज्य से कुछ दूषित स्वभाव के स्त्रियों को एकत्रित किए। ये दूषित चरित्र मतलब आप समझ सकते हो, दूषित चरित्र स्त्रियों को बुलाएं, कुछ दूषित चरित्र के स्त्रियों को बुलाएं, और बुला करके उनको भेजा गया, जाओ आप जंगल में जाओ जहां पर ये बिभांडक और उनके पुत्र ऋषि श्रृंग रहते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार उनके पिता से अलग करके उनको राज्य में लेकर के आओ। तो ये जो स्त्रियां थी, स्त्री है वो क्या, उनको क्या पता है साधु क्या है, तपस्वी जीवन क्या है, उनको पथभ्रष्ट कराना, ये तो सब उनको ज्ञान नहीं है। तो स्त्रियां गई जाकर के, जहां पर ऋषि श्रृंग का आश्रम थी, तो वो थोड़ी दूर में ये स्त्रियां जाकर कुटिया बना करके रहने लगी। कुछ स्त्रियां, चार पांच स्त्रियां गए थे और रहने लगी। अरे ये ऋषि श्रृंग जो है, अपने पिताजी विभांडक जब कुछ कार्य बस बाहर जाते हैं, तो ये ऋषि श्रृंग आश्रम से निकलते नहीं है। जब पिताजी कुछ कार्य के लिए बाहर जाते हैं तभी जाके वो आश्रम से निकालते हैं, क्योंकि आश्रम में वो पिताजी का सेवा और यज्ञ करना, ये दोनों उनके जीवन में व्रत है, साधना है, और कुछ वो बाहर आते नहीं है। लेकिन पिताजी जो बाहर जाते हैं वो आश्रम से निकलते हैं। और ऐसा हुआ, उनके पिताजी कुछ काम के लिए बाहर गए थे, तो ऋषि श्रृंग को आश्रम से कुटिया से बाहर आना पड़ा। और ऐसे वो जंगल में आकर के ऐसे घूम रहे थे फल कुछ भगवान का सामग्री जुटाने के लिए, तो अचानक उनके आश्रम से कुछ ही दूर एक कुटिया देखे, और कुटिया के भीतर कुछ स्त्रियां, अद्भुत स्त्रियां समझ नहीं पाए, क्योंकि उनके जीवन में स्त्री को देखे नहीं थे, पहली बार वो स्त्रियों को देखे, 16-17 साल के हो गए थे उनके जीवन में, वो पहली बार स्त्रियों को देखे। और जब पहली बार स्त्रियों को देखे वो देखते ही रह गए, ये कौन सा प्राणी है, क्योंकि अति अद्भुत स्त्रियां, जब क्योंकि उनका मकसद ये लेकर के गए थे कि हमें हमारा रूप के द्वारा, हमारा सौंदर्य के द्वारा ये ऋषि को आकर्षित करके राजा के पास पहुंचाना है। तो अपने को बड़े ही सुंदर सजावट करके, साड़ी गहने से पहन करके एकदम वो पूरा तैयार थे, उसको कैसे हमें ये तपस्या जीवन से बाहर ले आए। तो इस प्रकार का साजबाज हो करके वो आश्रम के थोड़ी दूर एक कुटिया बना करके नाच गीत कर रहे थे। कुछ स्त्रियां नाच रही थी और कुछ स्त्रियां बाजा बजा रही थी, गीत गा रही थी। तो इस प्रकार के ये स्त्रियां नाच गीत कर रही थी, तो कर रही थी। अरे ऋषि श्रृंग वो ही स्त्रियों के आश्रम होकर के निकले, और निकल ही रहे थे तो वो स्त्रियां जैसे ही ऋषि श्रृंग को देखें तुरंत आश्रम कुटिया से बाहर दौड़ करके आए और ये ऋषि श्रृंग को पकड़े, और पकड़ करके और जब सामने आए तो ऋषि श्रृंग भी देखने लगे कि क्या ये कौन है, ये किस प्रकार का जीव है, तो वो देखने लगे और अपने और जो बात करने लगे। स्त्रियों का जो वाणी है अति कोमल होती है, तो उनके जो कोमल वाणी के द्वारा उनको मन को आकर्षित किए, और अपने सौंदर्य अपने कोमल वाणी के द्वारा वो आकर्षित किए और उनके कुटिया में लेकर के गए। और लेकर के जाके कुछ मिष्ठान, कुछ मिठाइयां खिला दिए, क्योंकि ऐसे दूषित स्वभाव के लोगों से जब कुछ खाते हैं तो हमारा मन भी दूषित हो जाता है। तो वो लोगों के हाथ से जब कुछ पदार्थ खाएं तो उनके मन में ये स्त्रियों के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हुआ ऋषि श्रृंग का, और वो जैसे कहने लगे ऐसे ही वो सुनने लगे। और कुछ समय उस स्त्रियों के साथ बिताने के बाद अपने आश्रम में आ गए, लेकिन अपने आश्रम में आने के बाद भी उनका मन आश्रम में नहीं लगा, वो स्त्रियों के पास अपने मन को छोड़ दिए थे। भले शरीर रहा आश्रम में, लेकिन मन वो स्त्रियों के साथ बात कैसे बात करते थे, कैसे सब उनके ही चित्र उनके मन के भीतर अंक गया आ गया, तो और आश्रम में ज्यादा समय रह नहीं पाए, और फिर आश्रम छोड़कर वो फिर आ गए उन स्त्रियों के पास। और स्त्रियां जो गई थी ये ऋषि को मोटिवेटेड, मतलब ये करने के लिए, उनके मन को अपने तरफ खींचने के लिए, वो समझ गई कि अभी ये जो ऋषि कुमार हमारे अख्तियार में आ गया, हमारे बस में है। तो वो सारी स्त्रियां क्या की ना, ऋषि श्रृंग को लेकर के राज्य में आ गए। और जैसे ये ऋषि कुमार ये अंगदेश के राजा रोमपाद के अंगदेश में पहुंचते हैं, तुरंत इंद्र ने उनके राज्य के ऊपर बारिश करती है। और जैसे बारिश होती है तो रोमपाद को पता हो जाता है कि मेरे राज्य में ऋषि श्रृंग आकर के पहुंचे। तो राजा बाहर आते हैं, राज्य के महल से बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनके चेहरे से अग्नि जैसे तेज निकल रही है, ऋषि है, तपस्वी है, उनके शरीर से एक अद्भुत तेज निकल रही है, और समझ गए यही तपस्वी है, ऋषि है। तो उनको लेकर के बड़े स्वाद आदर अभ्यर्थना के साथ लेकर के आए और अपने कन्या के साथ विवाह करा दिए, और विवाह करके उनके राजमहल के भीतर रहने लगे। तो ये बात जब हो गया, विवाह हो गया, तब मंत्री सुमंत ने दशरथ महाराज को आदेश देते हैं, जाओ अभी आप जाओ ये जो ऋषि श्रृंग है अभी अंगदेश में आके पहुंचे, आप जाओ और अंगदेश के राजा रोमपाद दशरथ महाराज के बंधु है, आप बंधु के पास जाओ और उनको अपने जो बातें सब बताओ, पुत्रिष्टि यज्ञ करना है, उस समय यज्ञ करना है और इस अवसर पर आपकी ये ऋषि श्रृंग आवश्यक है, चाहिए मुझे मेरे यज्ञ में पौरोहित्य करने के लिए आप भेजिए। तो वहां पर दशरथ महाराज अपने सारे रानियों के साथ अंगदेश आते हैं और सारे अपने जो विषय है वो कहते हैं ये रोमपाद को, और रोमपाद भी अपने मित्र की बात सुनकर वो राजी हो जाते हैं और अपने जो कन्या और ये ऋषि श्रृंग को भेज देते हैं। और रोमपाद ना सॉरी ऋषि श्रृंग और उनके पत्नी शांता वो दोनों आते हैं दशरथ महाराज के साथ, और अयोध्या में जब पहुंचते हैं सारे अयोध्यावासी ऐसे ऋषि श्रृंग को दर्शन करके बड़े भाग्यवान मानते हैं और सारे उनका पूजा भी करते हैं और दशरथ महाराज राजमहल के भीतर लेके जाते हैं ऋषि श्रृंग को। और जाने के बाद दशरथ महाराज वशिष्ठ जी को विशेष दायित्व देते हैं, वशिष्ठ जी जो है कुल पुरोहित है उनको विशेष दायित्व देते हैं यज्ञ का कार्य संभालने के लिए। तो वशिष्ठ जी भी बड़े ही सावधानी के साथ ये यज्ञ का हिस्सा भाग ग्रहण करते हैं और मंत्रियों के साथ वो सारे राज्यों से धर्मपरायण राजाओं को बुलाते हैं और क्षत्रियों के लिए अलग, वैश्य के लिए अलग, ब्राह्मण के लिए अलग, शूद्र के लिए अलग, ये यज्ञ मंडप है और विश्वकर्मा जी साक्षात विश्वकर्मा जी आकर के यज्ञ मंडप बनाते हैं। अरे यज्ञ मंडप इतने सुंदर है जिनको इंद्र भी दर्शन करने के लिए वहां पर पधारते हैं और सारे धर्मपरायण राजाओं को वहां पर निमंत्रण होता है और ये राजाओं के लिए अलग कक्ष और ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र सबके अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग महल बनाते हैं रहने के लिए और सारे महल के भीतर प्रचुर परिमाण में भोजन की व्यवस्था पानी की व्यवस्था किया जाता है। तो उसके बाद ये दशरथ महाराज वहां पर पधारते हैं और खोले हस्त में सारे ब्राह्मण को दान देते हैं और ऐसे वो दान देख करके सारे सब कुछ खत्म हो गया था उनके पास, उसी समय एक ब्राह्मण आया और आकर के दशरथ महाराज को याचना किया और दशरथ महाराज अपने शरीर में जितने सारे गहने पहने थे सारे निकाल करके वो ब्राह्मण को दान कर दिए और दशरथ महाराज भी अपने अनुचर को सहकर्मियों को ये बता के रखे थे जब भी कोई व्यक्ति को दान करोगे बड़े ही सम्मान के साथ दान करना, क्योंकि जब दान दाता करता है यदि नेग्लेक्ट अबहेला और ऐसे घृणापूर्वक दान करता है तो ऐसा दान वो दान करने वाला दाता को नष्ट कर देता है। यदि हमें किसी को कुछ दान करते हैं यदि सम्मान के साथ और आदर के साथ दान नहीं करते हैं, ऐसे ले लो ऐसे भिखारी को कुछ लोग ऐसे दान करते हैं फेंक देते हैं, ऐसा दान का ये विधि नहीं है। तो शास्त्र में रामायण में वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी बताते हैं कि जब आप किसी को दान करते हो यदि आदर पूर्वक और बड़े सम्मान के साथ दान नहीं करते हो तो दान करने वाला दाता वो नष्ट हो जाता है, ऐसे रामायण में वाल्मीकि जी बताते हैं। तो आपने सारे अनुचरों को दशरथ महाराज बताए थे कि ये दान करने का जो आप दायित्व लिए हो बड़े ही सावधानी के साथ दान व्यवस्था करना है। तो करने के बाद तो दशरथ महाराज ऋषि श्रृंग के पास पहुंचते हैं और पहुंच करके बड़े ही विनय होकर के उनके चरण की पूजा करते हैं। करने के बाद दशरथ महाराज स्तुति करते हैं, मेरे कुल परंपरा को बढ़ाने के लिए अभी मुझे क्या करना है। तो वहां पर ऋषि श्रृंग यज्ञ की अनुष्ठान करने के लिए दशरथ महाराज को आदेश देते हैं और सरयू नदी के उत्तरी तट पर यज्ञ मंडप बनाया जाता है और यज्ञ आहुति देने के लिए ये ऋषि श्रृंग बैठ जाते हैं और राजा को वहां पर बैठाते हैं और अथर्व वेदों से कुछ मंत्र पाठ करके वो राजा के लिए एक पुत्रिष्टि यज्ञ संपादन करते हैं अथर्व वेदों के मंत्रों के द्वारा। तो ये यज्ञ जब अग्नि में घी आहुति दे रहे थे वो समय सारे देवता लोग अपने अपने हिस्सा अपने अपने भाग ग्रहण करने के लिए वहां पर आके पहुंचते हैं। और जब सारे देवता अदृश्य रूप में वो यज्ञ पट्टम में मंडप में आकर के पहुंचे और सारे यज्ञ का हिसाब ग्रहण कर रहे थे, तो सारे देवता लोग अदृश्य रूप में एक दूसरे के साथ बात किए, एक देवता दूसरे देवता के साथ अदृश्य रूप में बात करने लगे। क्यों? देवता लोग अपने मन में इच्छा रूप बदल सकते हैं, अपने को एक कीड़ा भी कर सकते हैं, मच्छी मक्खी भी कर सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं, तो उनके भीतर ये योग शक्ति है। तो सारे देवता लोग इस प्रकार अदृश्य रूप में अपने एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, और करते करते तो उन्होंने सारे देवता लोग विचार किए, अभी तो रावण का प्रताप से सारे देवता लोग को इतना कष्ट हो रही है, तो अभी तो यहाँ पर ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी को हमारे दुख के विषय में बताना चाहिए। तो वहां पर ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे और सारे देवता लोग वहां पर ब्रह्मा जी को जाकर स्तुति करते हैं। आपकी कृपा प्रसाद से ये महाप्रतापी जो रावण है देवता को बड़े ही कष्ट पहुंचा रहा है, तो अभी आप उनका निराकरण की उपाय कह सकते हो, किस प्रकार का समाधान हो, कैसे ये महाप्रतापी शक्तिशाली असुर से हमें अपने को शांत करें, कैसे ये व्यवस्था आप ही कर सकते हो। तो ये बात जब सारे देवताओं के मुख से सुनते हैं ब्रह्मा जी, वो भी थोड़े समय सोच करके बैठ जाते हैं, और थोड़े समय के बाद वो विचार करते हैं, हाँ अभी मेरे हाथ में समाधान की उपाय आ गया है। तो ये रावण जब तप कर रहा था तो मुझसे यक्ष रक्ष गंधर्व देवता वो किसी से नहीं मरेगा इस प्रकार का वर मांग लिया था, किंतु एक ही चीज को भूल गया था, एक ही चीज को छोड़ दिया था। वो मनुष्य को बड़े ही दुर्बल समझा, मनुष्य को बड़े ही कमजोर समझ के मनुष्य को ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दिया, अवहेला कर दिया, मनुष्य के विषय में वो कुछ मेरे से वर नहीं मांगा। अभी कोई यदि आकर के मनुष्य रूप लेकर के आए और ये मनुष्य का हाथ में उनका वध हो सकता है, तो ठीक उसी देवता लोग और ब्रह्मा जी इस प्रकार का बातचीत कर रहे थे, उस अवसर पर भगवान विष्णु वहां पर पधारे, उपस्थित हुए, प्रकट हो गए। जब देवता लोग और ब्रह्मा जी इस प्रकार का कथोपकथन कथन चल रही थी, उसी अवसर पर भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए, आकर के पहुंचे। तो जब विष्णु प्रकट हो गए, सारे देवता लोग उनके चरण की पूजा किए और सारे बातें बताएं और विस्तुति किए, प्रभु अभी ये मर्त्य लोक में दशरथ महाराज करके बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति है, बड़े उदार हृदय के व्यक्ति है, धर्म के प्रति उनका बड़े ही अनुरक्त है, वो अभी पुत्रिष्टि यज्ञ कर रहे हैं, तो कृपा करके ऐसे धार्मिक राजा दशरथ के घर में आप प्रकट हुई है, धार्मिक दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में आप ये मर्त्य लोक में जाइए और ये रावण के प्रताप से हमें देवताओं को शांत कीजिए। तो सारे देवताओं और ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं भगवान विष्णु को, तो भगवान विष्णु ये अभय देते हैं, मतलब सारे देवता को यहाँ पर कह रहे हैं कि सारे देवताओं तुम्हारा कल्याण हो, आप ये भय को त्याग दो, मैं सारे देवताओं के हित के लिए मैं मर्त्यलोक में प्रकट होऊंगा और अयोध्या भूमि को मैं मेरा जन्मस्थान के रूप में मैं चुनूंगा और दशरथ महाराज को मेरे पिता के रूप में मैं मर्त्यलोक में जाकर 11,000 बरस तक मैं वहां पर राज्य शासन, पृथ्वी पर राज्य शासन करूंगा। वो सारे देवताओं और ब्रह्मा जी को ये अभयवाणी सुनाते हैं, और इस अवस्था जब भगवान विष्णु इस प्रकार का अभयवाणी सुनाते हैं, तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को बुलाते हैं और बुला करके सारे देवताओं को आदेश देते हैं, जाओ हे देवताओं, अभी तुम लोग अपने शक्ति के प्रताप से ऐसे एक संतान उत्पन्न करो जो कि प्रभु श्री राम जब मर्त्यमंडल में जाकर के जन्म लेंगे, प्रकट होंगे, तो वो ऐसे के संतान उत्पन्न करो, उनके लीला का सहायक बने। जब ब्रह्मा जी जब इस प्रकार का आदेश देते हैं सारे देवताओं को, तो वहां पर अग्निदेव सॉरी सूर्यदेव अपने शक्ति से सुग्रीव को जन्म देते हैं, और बृहस्पति देवताओं के गुरु जो बृहस्पति वो तार करके एक बानर को जन्म देते हैं, प्रकट शक्ति से उत्पन्न कराते हैं, और अग्निदेव नल को जन्म देते हैं, विश्वकर्मा नील को जन्म देते हैं, और ये पवनदेव वो हनुमान को जन्म देते प्रकट उत्पन्न कराते हैं। इस प्रकार जितने सारे देवताएं अपने अपने शक्ति से अनेक अनेक बानरों को जन्म दिए, उत्पन्न किए, और ये सारे बानर लोग जब उत्पन्न हो गए, सारे बानर लोग जाकर के, और इंद्र ने उनको उत्पन्न किए थे, बलि को इंद्र ने, बलि और सूर्यदेव ने सुग्रीव को जन उत्पन्न किया। तो इस प्रकार सारे देवताओं अपने अपने शक्ति से इस प्रकार एक एक शक्तिशाली बानरों को उत्पन्न किए, और ये बानरों को जाकर के भगवान राम, भगवान श्री राम वहां आने तक वो पहाड़ों के गुंफे में रहे, छुप गए। और जब इस प्रकार का देवताओं के द्वारा शक्ति प्राप्त होकर के ये सारे बानर लोग वहां पर प्रकट हो गए, छुप गए, तो वहां उसी अवसर पर जो ऋषि श्रृंग अपने पुत्र दशरथ महाराज का पुत्रिष्टि यज्ञ को शुरू करते हैं। और ये पुत्रिष्टि यज्ञ से एक बहुत शक्तिशाली यज्ञ पुरुष उत्पन्न होता है। जब आहुति देते हैं ऋषि श्रृंग यज्ञ में, तो वहां पर यज्ञ कुंभ से एक शक्तिशाली शक्तिशाली यज्ञ पुरुष उत्पन्न होता है। और ये शक्तिशाली पुरुष अपने हाथ में स्वर्ण के पात्र है, वो यज्ञ पुरुष के हाथ में एक स्वर्ण के पात्र है, और ये पात्र लेकर के वो जब उत्पन्न हुआ और उनके शरीर से ऐसा तेज निकल रही थी, उस चारों दिशा एकदम मतलब उजाला हो रहा था वो समय। और वो दशरथ महाराज की ओर देखने लगे, यज्ञ पुरुष देखने लगा और लेकर के अपने हाथ को बढ़ा दिया और बढ़ा करके कहने लगा, हे दशरथ महाराज, देवताओं के द्वारा ये जो पायस, एक प्रकार का खीर, ये जो चड़ू यज्ञ उचिष्ट चड़ू, ये देवताओं के द्वारा बनाया गया है, तो आप उनको स्वीकार कीजिए। तो जैसे ही यज्ञ पुरुष ऐसे ऐश्वर्य पात्र को दशरथ महाराज की ओर बढ़ा दिया, तो तुरंत दशरथ महाराज उनको स्वीकार किए और अपने सार में रखे, रख करके वो यज्ञ पुरुष का परिक्रमा किए। परिक्रमा करने, जैसे ही परिक्रमा किए, तुरंत ये यज्ञ पुरुष वहां पर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जैसे अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तो दशरथ महाराज ये पायस का पात्र को लेकर अपने रानी हंसपुर में जाते हैं। जो जाकर के कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ये सारे को ये पायस को बांट देते हैं। आधा भाग पहले कौशल्या को, बाद में कैकेयी, बाद में सुमित्रा को दे देते हैं। तो उसके बाद यज्ञ समाप्त होता है, तो ऋषि श्रृंग को दशरथ महाराज विदाई देते हैं। और ऋषि श्रृंग चले जाने के बाद छह ऋतु एक साल में जो छह ऋतु होती है, तो ये छह ऋतु बीत जाने के बाद, तो ये रानियों कौशल्या और सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों रानियों के गर्भ से चार शक्तिशाली संतान उत्पन्न होते हैं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि कर्क लग्न में भगवान श्री राम और भरत जी मीन लग्न में, पुष्य नक्षत्र मीन लग्न, और ये उसके बाद शत्रुघ्न लक्ष्मण ये सुमित्रा से, आश्लेषा लग्न और कर्क, आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में जन्म होते हैं। और जैसे राज महल के भीतर चारों पुत्र तीनों रानियों के गर्भ से जन्म लेते हैं, तुरंत आकाश मार्ग से सारे गंधर्व ये गीत गाते हैं और सारे अप्सराएं नाच करते हैं और सारे जो देवताएं हैं वो दुंधी भी बजाने लगते हैं। दुंधी भी एक बाजा है, वो बाजा पीटने लगते हैं और सारे आकाश, जैसे भगवान अपने को, वही चारों जो है भगवान विष्णु के अंश है, अपने को चार रूप बना करके वो तीनों रानियों के गर्भ से उत्पन्न हुए। और जैसे भगवान ये तीनों रानियों के गर्भ से उत्पन्न हुए, सारे अप्सराएं नाचने लगे, देवताएं दुंधी भी बजाने लगे और गंधर्व लोग गीत गाने लगे और सारे देवताओं अयोध्या के ऊपर फूल का बारिश करने लगे। सारे अयोध्या के ऊपर फूल का, ऊपर से आकाश मार्ग से फूल का बारिश हो रही थी। तो इस प्रकार, और अयोध्या के गली गली में लोगों के मुख में एक प्रकार का अद्भुत हंसी, एक अद्भुत चमक दिख पड़ रही थी, क्योंकि ये दशरथ महाराज की इतने बड़ी उम्र में, बुढ़ापा उम्र में, जब राजा को इस प्रकार का एक नहीं, दो नहीं, चार इस पे तेज मतलब कांतिजुक्त पुत्र संतान जन्म लेते हैं, तो सारे अयोध्यावासी और राजा दशरथ भी बड़े ही धार्मिक थे और अपने प्रजाओं को पुत्र वत्सल जैसे, पुत्र जैसे पालन करते थे। और दशरथ महाराज के राजमहल के भीतर चारों कीर्तिवान इस प्रकार का शक्तिशाली ये संतानों के जन्म होने से तो सारे अयोध्यावासी एक प्रकार का सारे स्त्रियां अयोध्या की स्त्रियां गहने में सजे होकर सारे अयोध्यावासी नए नए पोशाक और सारे अयोध्या के आम के पत्ते के द्वारा तोरण बनाए गए थे, सारे अयोध्या फूलों की माला फूलों के द्वारा सजाया गया था। एक सारे अयोध्या एक प्रकार का सूर्य छुपने के लिए भी इच्छा नहीं कर रहा था। सूर्य अयोध्या जब भगवान श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए तो सूर्य भी वो भी जाने के लिए अस्त होने के लिए भी वो भी प्रस्तुत नहीं हो रहा था। मैं भी अस्त होने के लिए इच्छा नहीं हो रहा है, इस प्रकार का सूर्य भी रह गया था। तो सारा अयोध्या वासियों के भीतर एक प्रकार का अद्भुत आनंद दिख पड़ रहा था। जो जो एक दूसरे को जब वो मिलते थे सबके मुख में एक ही भगवान दशरथ महाराज के राजमहल में अद्भुत संतान प्रकट हुए, इस प्रकार खुशी कर रहे थे। तो भगवान श्री राम ऐसे जन्म लिए दशरथ महाराज का इतने बड़ी उम्र में। तो इसी प्रकार भगवान श्री राम जब जन्म लिए आगे जाकर के एक दिन दशरथ महाराज बैठे थे। एक दिन ऐसा हुआ वो आईना के सामने चले गए दशरथ महाराज। जब गए वो खड़े हुए थे और देखें उनके कान के नीचे जो बाल है वो सफेद हो गया था। दशरथ महाराज ऐसे आईना के सामने खड़े थे और देखें उनके कान के नीचे कुछ बाल सफेद हो गया था, क्योंकि ये जो बाल पक जाना ये एक बुढ़ापा का सूचना है। तो और बार बार शेविंग करने से भी बाल पक जाता है। तो दशरथ महाराज जब देखें कि अपने यहाँ पर बाल पक गया है तो विचार कर लिए कि अभी मुझे ये राज कार्य से छुट्टी लेना है, मेरे पुत्रों को अभी राज शासन देकर मुझे अभी बैठ जाना है। तो ये विषय को लेकर अपने कुलपुरोहित वशिष्ठ जी को बताते हैं। और वशिष्ठ को जब बताते हैं तो एक शुभ तिथि, कौन सा दिन मैं राम को राज तिलक दूं, कौन सा तिथि में मैं राम का राज्यभिषेक करूं, ये तिथि को पूछते हैं दशरथ महाराज। और वह उसके जवाब में ये वशिष्ठ जी दशरथ महाराज को ये बताते हैं कि जो मुहूर्त में जो दिन आप राम को राज तिलक दोगे, राज्यभिषेक करोगे, उसी मुहूर्त में सब समय शुभ हो जाएगा, तिथि शुभ हो जाएगा। तो आप जो मुहूर्त में राम को राज तिलक दोगे उसी मुहूर्त में सब कुछ शुभ हो जाएगा। तो ये बात को जब कहते हैं तो दशरथ महाराज तैयार होते हैं राम को राज्यभिषेक करने के लिए। ये रामायण का अनंत लीला है। तो यहीं पर और कुछ मैं बातें कुछ जोड़कर कहूंगा, ऐसे तो रामायण का अंत नहीं है। हाँ, तो इसी प्रकार भगवान श्री राम राज्य सिंहासन में जाने के लिए तैयार हो रहे थे और कई कई के प्ररोचना से विदुषी नारी अपने पति को भगवान को वनवास, श्री राम को वनवास, और अपने पुत्र को गादी मांगती है। और ये विषय को लेकर सारे अयोध्या वासियों के भीतर एक शोक की छाया खेल जाती है और भगवान वनवास जाते हैं। और वनवास से जब भगवान श्री राम लौटते हैं 14 साल के बाद, और भरत जी फिर शत्रुघ्न लक्ष्मण उनको सिंहासन देते हैं, और भगवान सीता जी के साथ जब राज्य शासन कर रहे थे, एक दिन ऐसे भगवान श्री राम ऐसे बैठे थे और सीता जी बगल में बैठी थी। तो अचानक भगवान श्री राम के मन में ऐसे बात हुआ कि सीता जी को कहने लगे, आपके मन में जो इच्छा है मुझे प्रकट करो, आप आज कुछ मुझे मांगो। तो दशरथ महाराज भगवान श्री राम के ऐसे कहने से तो सीता जी कहने लगे, आप जैसे पति जो नारी को प्राप्त हो, जो नारी को आप जैसे पति प्राप्त है, तो फिर और कुछ कमी नहीं रह जाता, और कुछ मांगने की चीज नहीं रह जाता। तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी आप मुझे कुछ मांगने के लिए कह रहे हो तो मैं यही मांग रहा हूं कि आप मुझे आदेश दो, कल प्रभात में मैं जंगल में जाके तपस्विनियों को दर्शन करूं, जो लोग पतिव्रता नारी है मैं उनका दर्शन करना चाहती हूं। तो भगवान श्री राम आदेश देते हैं, जाओ कल प्रभात में आप लक्ष्मण के साथ जाओ या भरत के साथ जाओ, आप ये तपस्विनियों को दर्शन करके आओ। तो सीता जी चले जाते हैं और सीता जी जब चले जाते हैं तो भगवान श्री राम अपने सारे गुप्तचरों को बुलाते हैं, बुला करके सारे गुप्तचरों को अलग अलग दिशा में भेजते हैं और उनको ये आदेश देते हैं जाओ अलग अलग दिशा में जाओ और अयोध्या के हर घर में जाओ, जाकर के मेरे राज्य शासन कैसे लोगों के मन के भीतर मैं और मेरे चरित्र सीता के चरित्र के विषय में लोगों के मन में किस प्रकार का है आप इसके विषय में जानकारी करके आओ। तो भगवान श्री राम के इस प्रकार आदेश लेकर सारे गुप्तचर जाते हैं और गुप्तचर एक घर में जाते हैं तो वो घर में जब पहुंचते हैं गुप्तचर वो दरवाजे के एक खिड़की में खिड़की में होकर के जब देखें तो एक स्त्री ने बहुत धनाढ्य परिवार की स्त्री है तो अपने गोद में एक शिशु एक बालक को लेकर के बैठी है और दूध पिला रही है वो स्त्री और पिलाते पिलाते वो बालक को कह रही है स्त्री अरे लाला हाँ तो अभी पेट भर के मन भर के मेरे दूध पी ले और आपको फिर दोबारा आपको मेरे ये मीठा दूध पीने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि भगवान श्री राम का राज्य शासन में जो भी है फिर उनको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा, फिर दोबारा उनको माँ के कुखी में माँ के घर में जाना नहीं पड़ेगा। भगवान श्री राम के जितने राज्य के जितने वासी है तो फिर उनको दोबारा ये जन्म लेना नहीं पड़ेगा तो इसीलिए तू जी भर के मेरे दूध को पी ले। ऐसे वो स्त्री ने अपने बच्चे को दूध पिला रही है और ऐसे कह रही है और अपने मुंह से अपने भगवान श्री राम की कीर्ति को गा रही है, अपने बच्चे को सुना रही है। तो इस प्रकार ये गुप्तचर सुने साइड होकर के छुप करके तो सुने और बड़े ही खुशी हुए, प्रसन्न हुआ उनके मन को, गुप्तचर के मन को, और वहां से वो निकल जाते हैं। और एक गुप्तचर ऐसे और एक घर में पहुंचते हैं तो वो घर में जब वो जाकर के गुप्तचर पहुंचते हैं तो वहां पर वो गुप्तचर देखते हैं एक पति और पत्नी दोनों बैठे हैं और ये पति पत्नी दोनों बात करते हैं और पत्नी कह रही है आप तो साक्षात मुझे रघुनाथ जी के स्वरूप जैसे लगते हो। पत्नी कह रही है अपने पति को, पति पत्नी दोनों घर के भीतर बैठे हैं और पति पत्नी दोनों बात करते हैं, पत्नी कह रही है पति को कि आप तो आज मुझे साक्षात रघुनाथ जी के स्वरूप जैसे दिख रहे हो। तो ये बात को जब पति उनके पति सुनते हैं तो अपने पत्नी को कहते हैं तो मेरा ये भाग्य नहीं है, आप एक सती स्वाधी नारी है, सती नारी का नजर में अपने पति भगवान के रघुनाथ जी का स्वरूप है मुझे ये पता है, फिर भी मैं भगवान श्री राम के जैसे नहीं हूँ, मेरे ये सौभाग्य नहीं है, मैं एक मंदभाग्य हूँ और भगवान श्री राम महाभाग्यवान व्यक्ति है और मैं एक पतिंगा जैसे और भगवान श्री राम सूर्य जैसे और मैं तो एक कोई गली में बहने वाला गंदा पानी है और भगवान श्री राम वो तो भगीरथ जैसे भगवती वो तो भगीरथ जैसे तो पावन करने वाले वो तो उनके जीवन है, तो आप भगवान श्री राम के साथ मुझे कैसे तुलना करते हो। तो इस प्रकार पति पत्नी भगवान श्री राम के चरित्र के विषय में कथोपकथन करते हैं, वो विषय को गुप्तचर भी सुनते हैं। और फिर और एक गुप्तचर जाता है और एक घर के पास और वो घर में जब जाते हैं और एक पति पत्नी ऐसे भगवान श्री राम के चरित्र के विषय में गान करते हैं, सुनते हैं किस प्रकार भगवान का कार्य अद्भुत है। जंगल में गए और समुद्र के ऊपर सेतु बांधे और रावण के लंका में गए, रावण को विनाश किए और सीता जी को वहां पर छुड़ाए, इस प्रकार भगवान श्री राम अद्भुत अद्भुत कार्य किए हैं, वो पत्नी बोल रही है अपने पति को। और उनके जवाब में उनके पति कहने लगे आप उनको सामान्य मनुष्य मत समझो, ये तो भगवान के लिए साधारण कर्म है, भगवान इसीलिए धरती पर आते हैं कुछ लीला अपने भक्तों के लिए और कुछ लीला करने के लिए। तो भगवान वो ये जो सेतु बांधे हैं रावण को मारे वो तो उनके लिए साधारण काम है, तो उनके लिए भारी काम ये बात नहीं है, तो ये संसार में लीला प्रकट करने के लिए प्रभु बार बार लीला बता लेते हैं। तो इस प्रकार पति पत्नी बात कर रहे थे और ये कीर्ति भी वो पति पत्नी के मुख से गुप्तचर सुने। और ये गुप्तचर जब एक धोबी के घर में जाके पहुंचे तो ये धोबी बड़े ही कर्कश बड़े ही कठोर शब्द पे अपने पत्नी को बोल रहा था, बड़े बड़े लाल लाल आंखें हैं और बड़े ही जमराज के जैसे दिख रहा था और अपने लात उठा करके अपने पत्नी को मार रहा था। लात उठा करके मार रहा था, और बड़े ही निष्ठुर वचन निष्ठुर शब्दों के द्वारा कुछ कह रहा, कह भी रहा, मार रहा था और कुछ भी कह रहा था। इस प्रकार जब कह रहा था मार रहा था, उनके जो धोबी का जो माँ थी वो कह रही थी धोबी को, अरे अरे पुत्र, आपका जो पत्नी है वो निष्पाप है, ये सती है, क्योंकि उनके पत्नी दिन के समय में और उनके पड़ोस के घर में गई थी, कुछ ज्यादा समय वो पड़ोस के घर में रुक करके आई थी। तो वो धोबी ने सोचा कि वो उनके घर में पड़ोस के घर में इतने समय ज्यादा देर तक रुक करके आई है, मैं उनको नहीं रखूंगी, मैं घर से उनको निकाल दूंगा। ऐसा वो धोबी ने सोच करके वो अपने पत्नी को मार रहा था और बड़े ही गाली गुलज कर रहा था, लाल लाल आंख करके बड़े ही ऐसा व्यवहार कर रहा था। तो वो जगह पर उनके जो माँ थी उनको समझा रहे थे, बेटा आपका पत्नी जो है सती है, उनके भीतर कोई कलमस नहीं है, उनका चरित्र में कोई दोष नहीं है, आप उनके चरित्र के प्रति संदेह मत करो, ये सती है, आप उनको स्वीकार कर लो, अपने घर में रख लो। हाँ, तो उसके जवाब में धोबी ने कहने लगा, मैं राम जैसे नहीं हूं जो कि रावण के घर में, राक्षस के घर में जो इतने साल रहने के बाद उनके पत्नी उनको स्वीकार कर लिया, मैं राम जैसे नहीं हूं। इस यही बात को बार बार कह रहा था, मैं राम जैसे नहीं हूं। इस प्रकार का धोबी बार बार कह रहा था। और ये छुप करके गुप्तचर, भगवान श्री राम के जो गुप्तचर, ये सारे बातें को सुन रहा था घर के बाहर से, और वो बार बार कह रहा था मैं राम जैसे नहीं हूं कि राक्षस के घर में इतने साल रह करके उनके पत्नी को रहने के बाद भी वो अपने साथ लेकर के आ गया। इस प्रकार का बातें कह रहा था तो गुप्तचर को सहन नहीं हो रहा था, तो तुरंत अपने तलवार निकाला और उनके मन में क्रोध आया, वो तलवार निकाला और वो धोबी को वहीं पर वो मारने के लिए तैयार हो गया था। किंतु जैसे ही वो तैयार हो रहा था, अचानक उनके मन में अपने प्रभु के जो आदेश स्मरण हो आया। भगवान श्री राम उनको आदेश दिए थे, मेरे प्रजा को कभी मृत्युदंड नहीं देना। अब सुनना, वो लोग क्या, मेरे चरित्र के विषय में उन लोग का क्या भाव है वो सुनना, किंतु जब भी कुछ ऐसे विपरीत सुनोगे मेरा प्रजा को कभी कभी दंड नहीं देना। इस प्रकार भगवान श्री राम सारे गुप्तचरों को आदेश दिए थे। ये बात जब अपने प्रभु के आदेश को स्मरण हुआ तो अपने तलवार को छुपा दिए और सुन करके, और जो बाकी जगह में गुप्तचर घूम रहे थे सारे अयोध्या के राज्य के भीतर, सब इकट्ठे होते हैं, वो एक दिशा चारों दिशा से सब एक जगह में एकत्रित होते हैं। और जब सारे गुप्तचर एकत्रित होते हैं तो आप क्या सुना अपने आपस में कहने लगे। वो कहने लगा, हाँ मैं तो वो दिशा वो सुना, भगवान प्रभु के कीर्ति ही गा जा रही है, सारे लोगों के मुख में एक ही बात बसी है, भगवान प्रभु श्री राम के कीर्ति जस, सबके मुख में एक ही भगवान श्री राम के जस ही स्फुरित होती है, सब भगवान श्री राम के बड़े ही प्रशंसा करते हैं। तो अंतिम में ये जो गुप्तचर धोबी के घर में जो घटना हुआ था वो घटना को वो वहां पर कहते हैं, मैंने एक धोबी के घर में गया था, वो धोबी अपने स्त्री को प्रहार कर रहा था, और उसके साथ साथ मैं श्रीराम नहीं हूं जो उनके पत्नी राक्षस के घर में रह कर आया था, रख लिया, मैं ऐसा नहीं रख सकता, इस पर कह रहा था, मार रहा था, वो मेरा हृदय को बड़े ही कष्ट दे रहा था, किंतु मैं उनका कुछ नहीं कर पाया। तो बाकी सारे गुप्तचर जो थे तो कहने लगे कि ये जो नीच लोग होते हैं उनका नीच प्रवृत्ति भी होता है, धोबी एक नीच जनी के नीच व्यक्ति है, तो उनके मुंह में एक बड़े व्यक्ति भगवान जैसे भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र के विषय में उनको कुछ इतना आदर भाव नहीं है, तो वो उनके विषय में आप भगवान श्री राम को बताना मत। सारे गुप्तचरों ने बात हो गए कि हमें जो अच्छे अच्छे बात सुने वही बातों को बताएंगे, किंतु ये जो धोबी लोगों ने जो बात कहे ये बात को हम नहीं कहेंगे। भगवान श्री राम जब हम पूछा करेंगे कि मेरा प्रजा ने मेरे विषय में क्या कह रहे हैं, तो ये बात को हमें भगवान श्री राम को नहीं बताएंगे, बाकी सब बताएंगे लेकिन ये बात को नहीं कहेंगे। तो ये करके सारे जो गए, और सुबह जब हुआ तो भगवान श्री राम सिंहासन में आने के पहले सारे ब्राह्मणों को सुवर्ण दान देते हैं, गाय दान करते हैं, उसके बाद अपने राज सिंहासन में आते हैं। और आने के बाद तो भरत जी के द्वारा सारे गुप्तचरों को बुलाते हैं। तो सारे गुप्तचर आके भगवान श्री राम को बताते हैं कि प्रभु आपके आपके जो अयोध्यावासी है आपकी बड़ी आदर करते हैं, आपका भारी प्रशंसा करते हैं, सबके मुख में आपका प्रशंसा है। तो ये बात को सारे गुप्तचरों ने बताते हैं। अब सारे गुप्तचरों के मुंह में एक आनंद की आभास है, किंतु ये जो गुप्तचर था धोबी के घर से घटना को सुना था उनके मुंह थोड़ा म्लान हो गया था, थोड़ा मलिन हो गया था। उनके प्रभु के चरित्र के विषय में सुन करके उनके चेहरा में एक फिकापन दिख पड़ रहा था। जब अब भगवान श्री राम देखें ये व्यक्ति के ये जो गुप्तचर है उनके चेहरे में अलग प्रकार का नजर मुझे आ रही है, तो उन्होंने पूछे, उनको बुलाए और पूछे, आप जैसे जैसे जहू देखा है कि कुछ सुना है तेहूं तेहूं मुझे बता दीजिए, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। भगवान श्री राम वो गुप्तचर को ऐसे बता दिए, आप जो जो देखे हो वो ऐसे ही मुझे बता दो और सुना दो, नहीं तो आपको पाप लगेगा। भगवान श्री राम के मुख से जैसे ये बात को सुनते हैं गुप्तचर ने, और धोबी के घर के घटना को सारे भगवान के सामने प्रकट करते हैं, सारे बताते हैं कि प्रभु एक धोबी थे और अपने पत्नी को इस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे और मार भी रहे थे, और उसके साथ साथ आपके जो पत्नी है धर्मपत्नी है उनके चरित्र के ऊपर उनके बड़े ही संदेह है, और वो कह रहे थे राक्षस घर में रहने के बाद भी इतने बड़े राजा अपने पत्नी को स्वीकार कर लिया, मैं राम के जैसे नहीं हूं कि आप दूसरे के घर में इतने समय रह करके आने वाले मेरे ये स्त्री को मैं रखूंगी, तो इस प्रकार का बात कर रहे थे। ये बात मुझे ही बड़े ही मेरा मर्म को लगा और मैं आपको बता दिया, आपके सामने छुपाना ये बात को मेरे जैसे व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं है, तो निर्णय आप उन ये विषय का निर्णायक है, आप उसके विषय में निर्णय लो। तो ये बात को सुनाने के बाद जैसे वज्र प्रहार करें लगे, वज्र के आघात जैसे लगे एक व्यक्ति को, उसी प्रकार भगवान श्री राम के हृदय में ये धोबी का जो क्या हुआ, मैं श्री राम के जैसे नहीं हूं, ये बार बार यही लाइन, ये जो मैं श्री राम के जैसे नहीं हूं यही प्रतिध्वनित कर रहा था भगवान श्री राम के कानों में। तो यही बात को जब बार बार उनके कान में पहुंच रहा था तो बड़े दुखी हुए और गुप्तचर को आदेश दिए, जाओ तुरंत आप भरत जी को बुला दो। और गुप्तचर जाते हैं भरत जी के महल में, पहुंचते हैं वहां पर, भरत जी को आदेश करते हैं आपको प्रभु श्री राम मिलना चाहते हैं, बुलाए हैं। तो जैसे भरत जी गुप्तचर के मुख से अपने प्रभु के मिलने के बाद संदेश को सुनते हैं, तो तुरंत भरत जी बड़े ही उतवाला होकर के बड़े ही आनंद से दौड़ दौड़ करके आकर के भगवान श्री राम के पास पहुंचते हैं। और भगवान श्री राम वो समय अपने सिंहासन छोड़कर और एक जगह में बैठ गए थे, और उनके आंखों से अश्रु बह रही थी, और उनके चेहरे में उनका जो करोड़ों सूर्यों का जो तेज वो थोड़ा कैसे म्लान जैसे लग रहा था। तो वो म्लान रूप को जब भरत जी दर्शन करते हैं वो और अपने को संभाल नहीं पाते, अपने को थय नहीं कर पाते, अपने जो बड़े भाई अपने जो प्रभु श्री राम के चेहरे में इस प्रकार उदास भाव, अपने उनके आंखों में इस प्रकार अश्रु बहते हुए रूप को जब दर्शन करते हैं तो भरत जी अपने को रोक नहीं पाते हैं। तो मुझे आदेश कीजिए मेरे लिए क्या कर्तव्य है, आप मेरे प्रभु हो तो मेरे लिए अभी क्या कर्म क्या है मुझे आप बताइए। तो वहां पर भगवान श्री राम बताते हैं सारे घटना को, सारे धोबी लोग जो बातें को कहे थे सारे भरत जी को सुनाते हैं, और ये विषय को जब भरत जी सुनते हैं तो वहां पर भगवान श्री राम को भरत जी समझाते हैं, प्रभु आप जब सीता को रावण के गृह से लेके आए तो अग्नि के द्वारा शुद्ध प्रमाणित हुआ, सीता देवी सीता अग्निदेव के द्वारा शुद्ध है करके, पवित्र है करके स्वयं साक्षात अग्निदेव भी उनको प्रमाण करके दिखाया, और ब्रह्मा जी भी ये बात को, देवी सीता जो सती है पवित्र है ये बात को भी ब्रह्मा जी भी वो समय बताए, और हमारा पिता दशरथ महाराज भी समर्थन करते हैं, इतने सारे और सारे जगत के सामने सीता वंदनीय है, पूज्या है, और ऐसे वंदनीय स्त्री ऐसे वंदनीय सीता के चरित्र के प्रे के नीच वर्ग के लोग वो क्या कह दिया क्या बोल दिया, उसके विषय में आप इतने ले रहे हो, भारी बात भारी ले रहे हो, इतने गंभीर ले रहे हो, गंभीर बन रहे हो, तो ये सीता जी के चरित्र के ऊपर इस प्रकार आपको सोचना ठीक नहीं है। तो उसके जवाब में प्रभु श्री राम अपने भाई भरत जी को बताते हैं, कहते हैं मुझे अवश्य बात पता है, मुझे मालूम है कि सीता पवित्र है, फिर लोकोपवाद के कारण आप तुरंत इसी मुहूर्त इसी वक्त आप सीता जी को लो और जंगल में छोड़ करके आओ। तुरंत भगवान श्री राम भरत जी को आदेश करते हैं, अभी जाओ सीता जी को लो और जंगल में छोड़ करके आओ। और जैसे भगवान श्री राम के मुख से ये वाणी निकली, तुरंत भरत जी मूर्छित होकर के जमीन में गिर पड़ते हैं, मूर्छित होकर के जमीन में ही गिर पड़ते हैं। तो वहां पर पद्म पुराण में वैशंप्यान जी प्रश्न करते हैं, ये से कैसे सारे जगत जिसको वंदना करती है, सारे जगत के सामने जो प्रणम्य है, पूज्य है, ऐसे देवी सीता के चरित्र के ऊपर, फिर अयोध्या में जन्म लेने वाले अयोध्यावासी, भले वो धोबी है ना क्यों, भले नीच परिवार में जन्म है ना क्यों, फिर अयोध्या में है, फिर अयोध्या में जन्म लेकर के भगवान श्री राम और उनके धर्मपत्नी सीता के चरित्र के पूरे इतने संदेह कैसे, ये विषय के जब प्रश्न होती है तो शास्त्र में वहां पर जवाब दिया जाता है कि मिथिलेश नरेश, मिथिला के राजा जनक जब यज्ञ करने के लिए पृथ्वी जोत रहे थे, वो समय जो हल का जो धार है, दाढ़ धार है, वो जमीन के बड़े गहराई से चली गई। जब जमीन के गहराई से चली गई, वो गहराई से एक अद्भुत अति सौंदर्य एक संतक कन्या प्रकट होती है, और मिथिलेश नरेश वो अति सौंदर्यवान ये कन्या को अपने गोद में उठा लेते हैं और अपने वो कन्या को पालन करते हैं और उनका नाम सीता करके रख देते हैं। तो मिथिलेश राजकुमारी सीता, देवी सीता, वो समय राजमहल के भीतर अपने सखियों के साथ एक बार निकल करके, राजमहल से निकल करके उद्यान में गई थी। और जब उद्यान में ऐसे वो खेल कर रहे थे, इधर उधर हो रहे थे, तो अचानक एक पर्वत की चोटी के ऊपर, एक उद्यान के एक पर्वत है, वो पर्वत की चोटी के ऊपर दो सुख पक्षी को देखें, देवी सीता एक दो सुख पक्षी को देखें, और ये दोनों सुख पक्षी पुरुष और स्त्री, तो दोनों सुख पक्षी जो है पति पत्नी है, पुरुष और स्त्री है, वो अपने अपने में बात कर रहे थे कि पृथ्वी में श्री राम करके एक महान पुरुष भगवान मनुष्य रूप में आएंगे और उनके धर्म पत्नी सीता बनेगी और ये मनुष्य रूप में रहकर वो 11,000 बरस तक पृथ्वी का शासन करेंगे और उनके राज शासन के समय सारे जो प्रजा है बड़े सुख में रहेंगे, किसी को मृत्यु का डर नहीं सताएगा, किसी को रोग की भय नहीं रहेगा। इस प्रकार के दोनों सुख पक्षी जो पति पत्नी, सुख पति पत्नी, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और उनका पत्नी बनेगी मिथिलेश कुमारी राजकुमारी सीता, इस प्रकार बात कर रही थी कर रहे थे। तो ये बात को देवी सीता सुन लिया और सुन करके अपने जो सखी थी अपने साथ में, तो अपने सखियों को आदेश दिए, जाओ ये जो दोनों सुख पक्षी है उनको पकड़ करके ला करके मेरे हाथ में दो। तो ये उनके जो सखियां थी तो चुपके चुपके गए और दोनों सुख पक्षी को पकड़ करके लाए और सीता जी के अर्पण कर दिए। और अर्पण करने के बाद सीता जी, देवी सीता जी, वो दोनों सुख पक्षी को पूछते हैं कि ये राम कौन है और ये सीता कौन है, तो ये राम कैसे हैं। तो इस सारे बातें को वहां पर सीता, देवी सीता सुख पक्षी को पूछते हैं, तो आप ये विषय कैसे सुने, आपको ऐसे ये विषय सब कहते कैसे पता चला। तो ये जब बात को पूछते हैं देवी सीता, तब ये सुख पक्षी दोनों कहने लगती है कि हमें वाल्मीकि आश्रम में रहने वाले सुख पक्षी हैं, हमें जो दो पक्षी हैं हमें वाल्मीकि के आश्रम में रहने वाले हैं। वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के चरित्र के ऊपर बहुत बड़ा ग्रंथ बनाए हैं और अपने शिष्यों को वो रोज सुबह शाम भगवान श्री राम और उनके सहधर्मिणी पत्नी सीता के, देवी सीता के चरित्र के ऊपर अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं। और वाल्मीकि जी अपने आश्रम में जब अपने शिष्यों को भगवान श्री राम के चरित्र के ऊपर इस प्रकार का सारे विषय सुनाते हैं, तो उनके आश्रम में हमें रह करके वाल्मीकि के मुख से ये सारे बातें हमें सुनते हैं। और ये बात को जब सुख पक्षी देवी सीता को कहते हैं, तो देवी सीता के मन में और लोभ बढ़ती है हाँ, और लोभ जब बढ़ती है तो और जिज्ञासा करती है। देवी सीता जिज्ञासा करते हैं कि ये प्रभु श्री राम कैसे देखने के लिए कैसे होंगे, तो उनके विराट बहुत विस्तार से सुख पक्षी दोनों भगवान श्री राम के रूप का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन देते हैं। उनका मुख कमल के जैसे हैं, उनका आंख कमल जैसे हैं, उनका लंबा बाहु है, हाँ बड़े बड़े नितंब ये का, उनका जो छाती है बड़े ही चौड़ा, ऐसे सारे भगवान का जो रूप का सौंदर्य है वो बखान करते हैं, दोनों सुख पक्षी बखान करते हैं। और भगवान श्री राम का इस सौंदर्य का बखान को सुनकर श्रीदेवी सीता के हृदय में और लोभ बढ़ती है, और सारे भगवान के ये रूप सौंदर्य को बखानने के बाद तो दोनों सुख पक्षी देवी सीता को कहते हैं अभी हमको छोड़ दो, क्योंकि हाथ में पकड़ रखी थी, हाँ देवी सीता ये दोनों सुख पक्षी को अपने हाथ में पकड़ रखे थे, और दोनों सुख पक्षी पकड़ा हुआ अवस्था में सारे बातें को बता रहे थे। तो बताने के बाद तब दोनों सुख पक्षी कहते हैं अभी हमें छोड़ दो, जो बताना था आपको हमें सुनाए अभी हमें छोड़ दो। तो वो जगह पर देवी सीता कहते हैं कि जब तक राम यहां पर नहीं आ जाते तब तक मैं आप लोगों दोनों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप जो कहे राम आएंगे, और इस प्रकार जिज्ञासा कर रहे थे देवी सीता, तो दोनों सुख पक्षी को पता चल गया कि इतना जिज्ञासा ये जो कर रही है ये कौन है, उनको दोनों सुख पक्षी को पता चल गया ये जो है वो देवी सीता है। तो चरण में गिरते हैं दोनों सुख पक्षी देवी सीता के चरण में गिरते हैं, और सारे भगवान श्री राम के विषय में बताते हैं। अब बताने के बाद तो देवी सीता को बड़े ही विनय करते हैं अभी हमें छोड़ दो। तो देवी सीता वहां पर कहते हैं जब तक प्रभु श्री राम यहाँ पर नहीं आ पहुंचते तब तक आप दोनों को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, तो आप दोनों को मैं मेरा राजमहल में रखूंगी और मीठा मीठा फल खिलाऊंगी। आप जंगल में जाकर के फल खाते हो तो मेरे राजमहल के भीतर रहकर के आप ये मीठा मीठा फल खाओ। तो देवी सीता के मुख से जब सुनते हैं तो दोनों सुख पक्षी बड़े दुखी हो जाते हैं और बड़े ही विनय करते हैं, हम जंगल में घूमने वाले पंखी है, हमें पेड़ के सुख पेड़ के डाली के ऊपर बैठकर जो सुख हमें प्राप्त होता है आपका राजमहल के भीतर वो सुख हमें प्राप्त नहीं होगा। तो देवी सीता आप एक सती नारी हो, आप अच्छे गुण की स्त्री हो, तो कृपा करके हमें छोड़ दो। लेकिन देवी सीता वहां पर छोड़ते नहीं है, तो वहां पर देवी सीता ने आप पुरुष सुख पक्षी को छोड़ देते हैं और उनके जो स्त्री सुख पक्षी है उनको और छोड़ते नहीं है। तो उनको कहते हैं जब तक श्री राम यहां पर नहीं आते हैं तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार जो स्त्री सुख पक्षी है उनको नहीं छोड़ते हैं, और ये स्त्री सुख पक्षी जो है वो समय गर्भिणी थी, हम अपने शरीर के भीतर कुछ बच्चे थे, और वो पुरुष सुख पक्षी जो है वो विनय करते हैं मेरे जो ये स्त्री है उनके गर्भ के भीतर बच्चे हैं, और अब यहां हमें छोड़ दो, जंगल में जाते हैं, अरे बच्चा जन्म होने के बाद फिर हमें आपके पास आ जाएंगे। लेकिन देवी सीता वहां पर वो स्त्री सुख पक्षी को नहीं छोड़ते हैं, आप पुरुष सुख पक्षी को वो छोड़ दे, जाओ तुम जाओ, लेकिन आपका जो पत्नी है हाँ उनको मैं नहीं छोड़ूंगी। और जब इस प्रकार का देवी सीता कहते हैं तो अपने पति के विरह से वो सुख पक्षी बड़े ही आघात उनके हृदय को लगता है, और अपने पति के विरह से हाँ वहां पर उनका शरीर छूट जाता है, वो मृत्यु हो जाती है। हाँ जब वो मृत्यु जब मृत्युवरण कर रही थी वो सुख पक्षी वो समय भगवान श्री राम को स्मरण कर रही थी, क्योंकि वाल्मीकि आश्रम में रहते हुए भगवान के चरित्र को सुन रही थी, और मृत्यु के समय में वो स्त्री सुख पक्षी और भगवान श्री राम को स्मरण करते करते वो शरीर छोड़ दी। जब श्री राम को स्मरण करते करते शरीर छोड़ी तुरंत भगवत धाम से विमान आया और वो विमान में वो भगवत धाम चली गई। और ये सुख पक्षी स्त्री सुख पक्षी भगवत धाम जाने के बाद वो पुरुष सुख पक्षी वहां पर आके पहुंच गया और पहुंच गया। हाँ तो ये जब मृत्यु हो गया तो वो समय मृत्यु होने के पहले स्त्री सुख पक्षी अभिशाप दे दिया देवी सीता को, देखो तुम इतने हट्टी स्त्री हो, इतने कहने के बाद हाँ तो योगी लोग कहते हैं मौन रहना सबसे अच्छा है, हमें दुर्भाग्यवश हमें श्री राम के चरित्र के ऊपर बात कर रहे थे हमको आप पकड़ लिया, हाँ ये हमारा मुंह से इस प्रकार का वाणी निकलने के कारण आज हम लोग आपके बंधन में हैं, तो आप इतने हट्टी हो, हाँ इतने विनय करने के बाद आपको आप हमें छोड़ नहीं रहे हो, तो मेरे पति से आप जो अलग किया, मेरे पति से जो आप अलग कर दिया, ये अलग करने का जो दुख है ये दुख से आज मैं मृत्यु को प्राप्त कर रही हूँ, वो सुख पक्षी कह रही है। मैं पति के वियोग से, पति से अलग होने से जो दुख है, ये दुख से मैं आज मृत्यु को वरण कर रही हूँ, मृत्यु और जा रही हूँ। तो मृत्यु होने के पहले मैं आपको अभिशाप दे रही हूँ। मैं गर्भिणी अवस्था में, गर्भावस्था में जिस प्रकार मेरे पति के बिना आज इस प्रकार का दुख भोग रही हूँ, ठीक मैं भी ऐसे ही आपको अभिशाप देती हूँ। हाँ, आपको भी इस प्रकार गर्भिणी अवस्था में आपका पति का अलग होने का दुख उठाना पड़ेगा। तो वहां पर सुखपखी, स्त्री सुखपखी देवी सीता को अभिशाप देती है और देख अभिशाप देख करके वो शरीर छोड़ देती है और धाम से विमान आती है और विमान में बैठ करके सुखपखी चली जाती है, स्त्री सुखपखी चली जाती है। और स्त्री सुखपखी चले जाने के बाद वो पुरुष सुखपखी वहां पर आके पहुंचता है और जब देखती है उनका पत्नी का मृत्यु हो गई है और पत्नी नहीं है, तो वो भी क्रोध में आ जाते हैं और दुखी हो जाता है और क्रोध में आ जाता है। दुखी और क्रोध में आकर वो भी सीता, देवी सीता को अभिशाप देता है कि मैं अयोध्या में एक धोबी के रूप में जन्म लूंगा और मेरा वाक्य बाण के द्वारा आपके पति क्रोधित होकर के तो आपको त्याग देगा। तो बाद में वो बोल करके वो पुरुष सुखपखी भी अपने पत्नी के विरह से वहीं पर शरीर छोड़ देता है। और जब पुरुष सुखपखी अपने शरीर को छोड़ दिया तो वो जा करके अयोध्या में एक धोबी के रूप में जन्म लिया। वही सुखपखी मृत्यु के बाद अयोध्या में जन्म लिया, लेकिन एक धोबी परिवार में जन्म लिया। फिर यही धोबी तो अपने वाणी के द्वारा भगवान श्री राम के मन के भीतर सीता के प्रति एक प्रकार का उद्वेग सृष्टि किया अपने वाक्य बाण के द्वारा, जो द्वारा भगवान श्री राम अपने धर्मपत्नी को ये जंग फिर निर्वासन दंड दिए। तो ये है रामायण का अनंत लीलाएं हैं। तो भगवान श्री राम के जन्मतिथि हमें रविवार को मनाएंगे, तो भगवान श्री राम को, श्री राम के कृपा को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का लीला को जब हमें सुनेंगे तो हमारे हृदय में एक प्रकार का स्नेह प्रेम भावना उत्पन्न होगा। ठीक उसी दिन में भगवान श्री राम के चरण में हमारे हृदय में अंकुरित हुए जो प्रेम के अंकुर है, ये अंकुर एक बहुत बड़ा पेड़ बनकर के भगवान श्री राम चरण कमल तक पहुंच पाए। यदि हमारे हृदय में ये प्रेम के अंकुर को अभी से उठाने के लिए जत्न करें तो निश्चित रूप से हम भगवान श्री राम के चरण कमल को प्राप्त करेंगे और उनका कृपा का भाजन बनेंगे। जय श्री प्रभु श्री राम की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, सारे भक्तों की। तो सारे भक्तों को निवेदन है तो आप प्रसाद हाल में जाइए, देखो तो थोड़े थोड़े जो भी प्रसाद मिलेगा आप वहां से प्रसाद लेकर के जाइए। हरे कृष्ण।